نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هادي الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ جس نے اپنی زبان کو نہ روکا اس نے اپنے آپ کو خود ہی بے وقت کر لیا. بے وقت کہتے ہیں کہ نیچے گرا لیا, اپنے آپ کم تر بنا لیا, ڈس ریسپیکٹ جس طرح کہتے ہیں. اس میں جو قول میں اشارہ دیا ہے علی کا ہنوجن ہے زبان کے بارے میں ہے کہ زبان کو اس نے نہ روکا تو اپنے آپ کو اس نے بے وقت بنا لیا. کیا مطلب؟ کہ جو انسان, اس انسان کا جو سکین ہوتا ہے نا پورا, ایک دم زہر ہے بالکل سامنے ہے, ایک پرسنلٹی ہے ہماری, پرسنلٹی ہمارے بہت کچھ بتاتی ہے, بہت اچھا آدمی ہے, یہ ہے فون ہے, جو بھی کچھ ہوئی ظاہر ہے کہ ہمارا اس کو جتنا چاہے بنا لیں, جتنا چاہے خوبصورت کر لیں, امپریشن پڑتا ہے لوگوں پر. لیکن کیا یہ صحیح ریپرزینٹ کر رہا ہے اس آدمی کو یہ چیز, اس کا زہر؟ بہت مشکل ہے. کہ اکثر یہ ہوتا ہے انسان کے اندر, اس کا ظاہر اور باطن کا کنٹراسٹ ہوتا ہے, دونوں مخالف چیز ہوتی ہے. کوئی ایک آدمی ہے آپ نہیں جانتے, اس کو آپ کے پاس آ گیا, بڑا شریف آدمی تھا ماشاء اللہ, بڑا نیک آدمی تھا, مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ پلاتے ہیں, کھانا وانا کھلاتے ہیں, اور جب کھانا وانا کھلا کے آپ فارغ ہوتے ہیں تو اس کے ہاتھ پاؤں دھلاتے ہیں, اندر سے کوئی چیز لے جاتے ہیں تو دیکھ رہا ہوتا ہے جو آپ کی قیمتی چیز پڑی جیب میں ڈال لیتا ہے. آپ کھانا وانا کھلا کے آپ چھوڑا چلا ہے, اب آپ اس چیز کو تلاش کر ہیں کدھر گیا, تو بیچارا جو مہمان آئے تھے نا اس کو لے گیا. ہوتا ہے نا اسٹوری, بہت ہے جی, بہت اچھا آدمی تھا, بڑا ایک آدمی تھا, بڑی پیاری شکل تھی, صورت تھی اس کی, بڑا ہاتھ میں تصویر پکڑی تھی اس نے. تو یہ بہت ہی روزمرہ کی سٹوری ہے, اس کو بتایا حضرت علی کہا جاتا ہے. کہ کیا ہے معاملہ, اس انسان کو کچھ پتا نہیں, ہم کہہ سکتے کچھ پتا نہیں چلتا آدمی کو کہ یہ کیسے ہے, کس قسم کا ہے, تو کس طرح پتہ لگتا ہے اس کا؟ اندر کا معاملہ تو اندر کا سارا, وہ سکین جو کرتے ہیں نا اندر کو انسان کے, وہ اس کی زبان کرتی ہے. بڑی زبردست مشین لگائی اللہ پاک نے سکین کرنے. جیسے ایک دکان ہے نا, اس دکان کے اندر آپ دیکھیں مال رکھا ہے بہت سارا, باہر شٹر لگا ہے اور تالا لگا ہے. اب آپ تالا لگائے, آپ کو کیا پتا دکان میں کیا کیا چیز ہے؟ کچھ پتا ہے؟ تالا کھلتا ہے تو آپ دکان میں جاتے ہیں, پھر آپ کو چلتا ہے اس میں یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. کیا پتا ہمارے اندر کیسے اخلاقیات ہیں, ہمیں تو نہیں پتا. क्योंकि इस पर ताला लगा हुआ है जबान का। जब ये ताला खुल गया, आपने बात कर दी, तो आप दुकान के अंदर दाखिल हो गए, उस इंसान के अंदर दाखिल हो गए, वो सब कुछ पता चल जाता है। तो जबान जो है वो सही तर्जमानी इंसान की कर जाती है बाजार, बहुत एहतियात करते करते वो आदमी जो अंदर है ना, उसके अंदर निकल आता है, बता देती है जबान कि भाई ये मुनाफिक है, ये सही है, ये गलत है, ये चोरी के इरादे से है, ये आपका गेम खेल रहा है, ये डिप्लोमेट आदमी है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, पुरातमाद आदमी है। उसकी गुफ्तगू जो है कहीं ना कहीं ऐसी स्लिप करेगी कि जहीन आदमी वो कम से कम 80-90% तो समझ सकता है उसकी गुफ्तगू से, उसकी बात से कि भाई ये आदमी किस किस्म का है, कैसा है। धोखा कम होगा, आदमी की जबान जो है उसको तर्जमानी करती है, बहुत बड़ा कौल है ना, और हकीकत भी होगा। तो जबान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दरअसल, बहुत अहम चीज़ है। इसके बारे में कुरान हकीम ने फरमाया है, यह आहिल लजीन अमनत कुल्ला अकोल कौल सदीदा, अकोल कौल सदीद। ये देखें अल्लाह ताला भी फरमा रहा है कि जबान जो है ना हकीकत में, इससे सही पता चलता है तकवे का और परहेजगारी का कि कितना आदमी परहेजगार है, कितना अच्छा इसका अखलाक है, कितने अच्छे इसके मैनर्स हैं, कितनी इसमें सदाकत है। वो किससे पता चलता है? कौल कौल सदीद, जबान से पता लगता है इंसान ये कैसी चीज़ है। यहाँ जो है इशारा इस चीज़ का है कि भाई अगर कोई आदमी परहेजगार बनना चाहता है, नेक बनना चाहता है, तो उसको किस किस क्या एक चीज़ है जो उसको बना सकती है, वो कौन सी चीज़ है? वो जबान है, जबान है। परहेजगारी, तकवा, ये तो बहुत बड़ा मुकाम है ना। हम सब इसी की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी परहेजगार हों। इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ क्या है हमारे लिए, ये सोचें हम इस रास्ते के अंदर जाने, जिस चीज़ को अचीव करने के लिए तकवे को, परहेजगारी को कुरान बताता है, क्या है वो? इस्लाह ज़बान, ज़बान की इस्लाह। सारे गुनाह जो होते हैं इंसान की ज़बान से होते हैं। ज़ाहिरी इबादत हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उससे इंसान परहेजगार तो नहीं बनता। परहेजगार जो बनता है वो बातनी सफाई और बातनी गुनाह ख़त्म जो इंसान की हो जाए, खबासत नहीं कर जाए। यानी विलायत की तारीफ जो की गई है वो क्या है कि अखलाक रजीला की जगह अखलाक हमीदा जब आ जाए तो वली है, विलायत मिल जाती है। देख जब तक अखलाक हमारे गंदे रहेंगे, चाहे कितनी भी इबादत हम जोर लगा लें, लेकिन इंसान परहेजगार नहीं बनता। तो कैसे इंसानों को जो तकवा अख्तियार करना चाहते हैं, परहेजगारी अख्तियार करना चाहते हैं, सबसे पहले जो सबक उसमें यह है कि भाई ज़बान को कंट्रोल, क्योंकि ज़बान ही है जो सब कुछ इंसान को बर्बाद करती है, हर चीज़ इसी से निकलती है। एक सहाबी थे, नबी करीम अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह किस चीज़ से सबसे ज़्यादा ख़तरा है? ख़तरा किस चीज़ का? मतलब ये नहीं कि दुश्मन आ रहे हैं मारेंगे, या भूख का ख़तरा है, या परेशानी है, या रोटी का ख़तरा है, नहीं। वो तो बेचारे आखिरत देखते थे, जैसे माशाल्लाह आप लोग हैं तो आप आखिरत ही देख रहे हैं, दुनिया थोड़ी देखेंगे। आप तो एक सिलेक्शन के साथ आ रहे हैं अपने कि यार हम नेक हो जाएं, हमें कोई ऐसी चीज़ें आ जाएं, हम गुनाहों से बचें। ये है ना, आप लोग इसको परहेजगारी से कहते हैं तकवा, ज़िक्र की मजालिस, किसी शेख से ताल्लुक, तो ये हमारा मकसद। ये थोड़ी आप कहेंगे मुझे ख़तरा, तो ख़तरे से मुराद ये होगा कि जो भाई मुझे जहन्नुम में डाल दे चीज़। तो आपने सवाल किया साहबी ने कि या रसूल अल्लाह कौन सी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन चीज़ है जो जहन्नुम के अंदर, बस ख़तरा जो मुझे जहन्नुम के करीब कर देगी और जहन्नुम में पहुँचा देगी, या मुझे अज़ाब मिलेगा आखिरत में, कब्र का, सब चीज़ों का, ताकि बचें इससे, उसको समझें। तो आपने उसमें प्रैक्टिकल जवाब दिए बड़ा। आपसे उन्होंने पहले ज़बान कैसे पकड़ा, ज़बान को पढ़ाया, सवाल ये था ना कि मुझे सबसे ज़्यादा किस से ख़तरा है? आप सुन अपनी ज़बान में बाढ़ को कहा, कहते इससे। जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है ध्यानरुप्त लगाने वाली चीज क्या है? दुनिया के अंदर बर्बादी इससे होती है, इसी से बर्बादी है। घर में लड़ाई झगड़े तलाकें और जनाब रिश्तेदारियों को ख़त्म होना, दोस्तियों को ख़त्म होना, और ये फितने फसाद ये जितने भी फैल रहे हैं दीन की शक्ल में है या दुनिया की शक्ल में है, सब जबान से इतनी खतर ये इसका हिलना इतना खतरनाक है, इस जबान का इतना खतरनाक है कि जब आदत पड़ जाती है इंसान को बोलने की, बोल रहे तो बाद बोलते बोलते उसको जबान से कोई ऐसा लफ्ज निकल जाता है कि उसको जहन्नम को ले जाता है, उसको पता भी नहीं, उसको पता नहीं मैंने जबान से क्या कहा, लेकिन क्या है उसको जहन्नम को डुबो देते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। चीज जब भी होती है खराब इंसान की जबान से होती है, बहुत लाजानी किस्म की बात इंसान जबान से निकल जाती है। बड़े बड़े लोग मसले कर रहे हैं, मसाइल कर रहे हैं, और देख रहे हैं झगड़े कर रहे हैं, यानी पता ही नहीं चला, आम लोगों की बात है, कुछ समझ नहीं होती दीन की, इतनी है वो नहीं होता, बैठे हैं चार आदमी से यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि भाई औली अल्लाह के खिलाफ बातें शुरू कर दें, अल्लाह के दोस्तों के खिलाफ। हालांकि कुरान क्या कहता है कि जो मेरे वली के खिलाफ है, मेरे दोस्तों के जो खिलाफ बात करेगा तो मुझसे जंग के लिए तैयार हो जाए, तब क्या पता उसने किसकी बेइज्जती कर दी, तुम्हें क्या ज़रूरत है भाई इन बातों करने की, ये तो बड़ा चोर है जी, तो फड़ा होता है, कौन कहता है ये कहाँ जी, ये कौन से नाम नहीं लेके लोगों कह देते, वो इतनी बड़ी वईद है उसमें बोला कि खबरदार मेरे औली अल्लाह के बारे में किसी ने कुछ कहा से मिसा जंग के लिए तैयार हो गए। आम आदमी तो हाल ही किया, मजाक उड़ाने में, तंज करने में, बात करने में, सारी सारी इबादतों को ख़त्म कर देता है, सारी सारी जिंदगी की इबादतें ख़त्म हो जाती, मजाक उड़ा रहे किसी अल्लाह के दोस्तों में मजाक उड़ा रहे थे, उससे भी आगे चले गए सहाबा, और बताएं कैसी जमात है सहाबा कलाम, आम आज देख रहे हैं आप, अस्तग़फ़िरुल्लाह सहाबा कलाम को भी नहीं छुआ। कभी कुछ साहब कर रहा थी बात कर रहे थे, हजरत अली ने जनाबा से क्यों किया, एक सहाबी थे और उन्होंने ऐसे क्यों कहा, उन्होंने वो उनको कत्ल की ले गए, तुम्हारे इसमें क्या देख रहे, इस बात से तुम्हें कोई ये शर्त तुम्हारे ईमान की, या तुम्हें इस तुम्हें इस फैसले करने के बाद तुम्हें ईमान मिलेगा, तुम्हें इन चीज़ का क्या फर्क है, वो ही बस जबान कहाँ ले जा रही इंसान को जी बताए, इससे भी आगे आवाज़ है साहबा से भी आगे आ जाए, नबी करीम से ज़ाते गला नहीं, मुनाजरे नहीं हो रहे आजकल, मुनाजरे आज भी हो रहे हैं और बड़े फख्र से होते हैं, क्या साबित करेंगे कि एक कह रहा है जी इल्म गैब था, दूसरा कह रहा इल्म गैब नहीं था, अब एक बहस के अंदर वो बहस क्या बन जाती है, जाती बन जाती है। मैं अपना ख्याल पेश करूँ, बेशक बेशक दोनों तरफ आलिम है, लेकिन बहस क्या बन जाएगी, जाती बहस बन जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा एहतियात करें इन मामलात में जाने के लिए, अच्छा कभी भी ना इन बातों में जाए, कभी नहीं हमें कोई दखल इन चीज़ों से, ये फजूल इंसान को पकड़ने वाली बात है। आम दुकान में खड़े हो बात, ये तो वो है जी ऐसे नहीं, हमको ऐसे कहते, ये तो वो है जी हमको ऐसे नहीं मानता, यानी आपकी ज़ाते ग्रामी ऐसी है कि जिस पर अल्लाह ताला ने दिखा दिया, कुरान में बता दिया, और बाकी चीज़ों में पर्दा डाल दिया, बस हमें उससे क्या ताल्लुक, जैसे अलिफ लाम मीम है, पूरा कुरान हमें दे दिया, हमारी समझ के लिए बातें कर दी, और अलिफ लाम मीम को छुपा लिया, तीन ही तो हर्फ हैं, छुपा लिया ना, तो हम उसी के पीछे पड़ गए, पूरे कुरान को छोड़ के बस अलिफ लाम मीम के पीछे पड़े हैं। अलिफ लाम मीम क्या चीज है, ये ऐसी क्या चीज है, ये ऐसी क्या चीज है, वो ऐसी क्या चीज है, समझे ना, ये हिमाकत है। इसमें अगर आप कहीं कहीं निकल जाए, अगर अल्लाह ताला मुनासिब समझता कि हमारे ये जहन के मुताबिक ये चीज़ है, तो बाकी कुरान जो समझाए तो ये अल्फाज भी समझा दे, सबसे मुख्तार इसको कहते ठीक है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी को जितना जाहिर करना था जाहिर कर दिया, हदीसों में आ गया, कुरान में आ गया, आए नहीं आए, اس کا تم پھر آپ اس سے زیادہ تجسس کیوں پیدا ہو گیا؟ یہاں تک کہہ دیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، آپ خدا نہیں ہیں، خدا کے بعد سب سے بڑی ذات آپ. اب یہ علم نہیں، وہ علم نہیں، فلاں نہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، غائب ہیں، زندہ ہیں، کیونکہ بات ہے بتا یہ رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے ساری، یہ زبان ہے. پتہ نہیں دونوں گروہ میں سے کس کس کو جہنم پہنچا دے. یہ بات ہے صحابہ کرام دیکھیں اس زبان کو کیسے کرتے تھے. چھوٹے معمولی صحابہ کی بات میں کہتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کس طرح، آپ کو جانا ہوتا تھا نبی پاک کے مجلس کے اندر، کس طرح جاتے، مٹی اور پتھروں کو منہ میں ڈال کے جاتے تھے کہ کہیں ایسی بات میں سے نہ نکل جائے اور کہیں گستاخی نہ بن جائے. حالانکہ نبی پاک نے کہا بھی کتنی احتیاط تھی. میرے بھائیو الحمدللہ ذکر اذکار کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھوں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، عملوں کے دھوکے میں مت آنا. نفس اور شیطان ایسا ہے کہ وہ ایسی جگہ سے ڈنک مارتا ہے آدمی کو پتہ ہی بھی نہیں چلتا. ان تمام اعمالوں کے ساتھ وہ جہنم میں پہنچا دیتا ہے انسان. اتنی احتیاط ہے زندگی میں آخری سانس تک، بہت احتیاط کی چیز ہے. بہت ستی چیزیں کو ساتھ اپنے چلے الحمدللہ، کسی جماعت کو برا کہنا، کسی کو کچھ کہنا، سب کہیں سب احمد شاہ احمد کیا، ہمیں سے کیا تعلق، آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے فلاں لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو فلاں لوگ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہے ہیں کہنے تمہیں کیا تکلیف ہے، میں کام اپنے کام پہ لگے لگے رہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا حلزان تک اللہ اقولو قولن صدیق مالبا. اسماس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسماس نصیحت فرما رہے تھے، اے اسماس تجھے میں گناہوں سے بچنے کی بہترین ترکیب نہ بتاؤں. کتنی بڑی بات ہے، اب کتنے گناہ گنے آپ، چند گناہوں کی بات ہوئی ہے نا، گناہ کتنے گناہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. فرمایا میں تجھے گناہوں سے بچنے کی ایک ترکیب نہ بتاؤں. پلاننگ دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی پیاری پلاننگ ہوگی. ضرور بتائیں، ہم بھی چاہتے ہیں، نہیں چاہتے گناہوں سے بچ جائیں تو ہر گناہ کی سزا تو ہے نا. بات کیا ترکیب بتائے یا رسول اللہ قربان جب بتائیں کہ میں گناہوں سے کیسے بچ سکتا. آپ سب سن رہے ہیں کہ اپنی زبان کو روک لیں، کم بچ زبان کو. پورا دین آتا ہے فساد ہی ختم ہو جاتا ہے، فساد ہی ختم ہو جاتا ہے. پتہ ہی زبان کا رک جانا جو ہے نا، ایکسپوز ہی نہیں ہوتا آدمی الحمد للہ، سارے اخلاقیات اس کے اندر ہی رہتے ہیں، اللہ کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے. بس ایک ہمیں کیا بہترین ترکیب سمجھ آ گئی گناہوں سے، قولو قولن صدیقا. حقیقت میں اس زبان کو درست کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ زبان ہماری ٹھیک ہو جائے. زبان ٹھیک ہوگی مطلب دن ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ ہمارا کام بن گیا. کیسے اس میں جو ہے رک جائے اور کیا چیزیں ہیں. تو یہ جو ہے نا قولو قولن صدیدہ، اسی کے اندر علاج ہے. قولن صدیدہ میں علاج ہے، قرآن کو غور سے پڑھیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ساری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قولو صدیدہ جو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ، قولو قولن صدیدہ، قولن صدیدہ کیا ہے؟ تو یہ تو علاج ہے جس سے تمہاری زبان صحیح ہو جائے گی. کہ جی کیسے کہ قولن صدیدہ سے، وہ قول ہے جس سے تمہاری زبان صحیح ہوگی. جی کون سی قول ہے آپ بتائیں، ایک صحابی کا تحقیق ہے، دیکھیں کس طرح بتا رہے ہیں. مختلف صحابی نے باتیں کی، ان کی تحقیق دیکھیں، مجھے تو بہت ہی پسند آئی. کیا ہے یہ قول؟ کہتے ہیں اللہ کا ذکر، میں لا الہ الا اللہ، یہ قول ان صدیدہ ہے، یہ علاج ہے. دیکھ لیں اللہ کا ذکر جو ہے وہ علاج ہے اس چیز کا، کہ اپنی زبان کو ذکر کیا جاتا ہے. اس میں دونوں فائدے ملتے ہیں. ایک تو کیا परहेजगारी नसीब हो जाती है, मुत्तकी बन जाएंगे हम। लेकिन आज समाज के लिए क्या बन जाएंगे? मुत्तकी बन जाएंगे। हर वक्त जिंदगी में हमें सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ तो वाकयात पेश आते हैं, कुछ ना कुछ उससे उसके मुताबिक आप जबान से कलमात गए, जिसबानी जिक्र हो जाएगा। देखें मिसाल के तौर पर कोई अल्लाह की नियमत मिलती ही नहीं मिलती है। चलो और नहीं, हम बड़े नाशुक्र लोगों में तो कोई नियमत नजर आती नहीं ना रूटीन में। खाना तो नियमत नजर आता ही नहीं आता, जब भूख लगती है आता है नजर है। भूख के वक्त भी वही एक नियमत है हमारे सामने भी, जब खाना आ जाए सख्त भूख लगी हो, बेहतरीन रूटीन बनी हो, सालों रखा हो सामने, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं? अगर हम कहेंगे बिस्मिल्लाह, क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमने जुबान को हिलाया खाने के साथ बिस्मिल्लाह कह दिया, और खाने के बाद हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस वक्त भी दो चीजें समझ आ गई बात, क्या जिंदगी दिन में कोई नेमत तो हमें मिलती है नहीं मिलती, काम तो हम करते हैं ना, तो हर काम की इब्तदा से पहले हम क्या कर लेंगे? बिस्मिल्लाह। ये कौन सदी है जबान का, बदल जाएगी जबान, क्योंकि आज का ये तरीका है ना जबान से तो बहुत फजूल बातें निकलती है ना, ये अजीब से बातें पता नहीं क्या करती, गलती ये और फला क्या नहीं चलता, इंग्लिश में निकलती हैं और हर जबान आदमी बात करता है। तो उस क्या होना चाहिए? जब हम बैठे हैं गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, घर से निकले हैं, कोई भी काम तो हमने करना ही है ना, तो किससे स्टार्ट करें? बिस्मिल्लाह। इलाज हो रहा है जबान का, कौन सदी का, अभी उस तरफ नहीं जा रहे किसी की क्या बरकत है, क्या मिलती है, हम अभी क्या कर रहे हैं? इलाज कर रहे हैं। वो नेमत तो मिलती है ना, ये नहीं मिलती, नेमत से मुराद यह है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह जैसे खाना मिल गया, ये भी तो नेमत है ना। आप जल्दी जल्दी आ रहे हैं नमाज पे, आपको नमाज मिल गई, दिल खुश होता है नहीं होता? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें क्या होगा कि आप समझ जाएंगे अल्लाह ताला के सुभान अल्लाह, इस चीज किसने कदर की है कि मैं इसको जमात दिला दी, ये शख्स बड़ा बड़ा ज़हीन है, क्योंकि कलमात तो मैं तशरीह नहीं कर रहा, अल्लाह फौरन उस पर कदर फरमाए। तशरीह तो बहुत है कलमात के लिए, आप जानते हैं क्या बड़े कदम है ये, हम इसको लिफ्ट नहीं देते। अंदर आए सर्दी है, मस्जिद गर्म मिली है, मुंह उठा के आगे किसी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सही होता ना है? होता है, अभी सिस्टम खराब हो जाता, बजाय गर्म की ठंडी हवा देने लगता। नमाज तो हमने इसी मस्जिद में पढ़नी थी, क्या आदमी को जुकाम होता, क्या आदमी को बुखार होता, या किसी को नज़ला होता, उस वक्त क्या पोजिशन होती, और सब ये किसके अख्तियार में है? मेरे मौला के अख्तियार में। कोई सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रिक हम लगा दिए बटन चल गए, अल्लाह चाहे तो साइकिल में सब कुछ खत्म कर। बहुत से डिफेक्ट होते हैं, पता नहीं चलता लोग समझ नहीं आ रहा कहाँ से कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह वाला हाथ रखता तो काम चल पड़ती। वो कहते सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, टेक्निशियन की तो ये तो सबाब है सारे, होता ही नहीं होता, बस प्रैक्टिकल बातें आपको बताओ। उसको यकीन होता है कि सब क्या चीज़ है, किसने कौन कंट्रोल कर रहा है? अल्लाह। तो कहता है क्या बात है कजी, बड़ी ठंडी हवा रही जनाब, कुछ नहीं हो रहा, टेक्शन लगा है, वो किधर है दिखाना मुझे, स्विच किधर है? वो हाथ करके स्विच को देख दो, सिस्टम चल पड़ता है। ये क्या हुआ? वो कह देंगे ये तार टूटी जा, वो आपने हाथ रखा तार मिल गई, हकीकत तार कहीं और मिलती है। इसी बात में बताओ, तो जब हम अंदर आ रहे हैं मस्जिद के मेरे भाइयों, कितना बेहतरीन माहौल मिल रहा है आपको, घर में मिली है, फर्स्ट क्लास बैठे हैं, कमीज उतारी हैं, कपड़े उतारी हैं, चढ़ होकर बैठे, ये किसका करम है? तो भूल गए आप क्या कहें हम यहाँ? याद रखनी बात, छोटी सी भी नेमत, पानी पिया आपने, मजा आ गया पानी पी के, फौरन क्या बोलेंगे? प्यास लगी थी पानी मिली, दिल कह रहा है आपको दूध पीने का, देख गया जल्दी जल्दी आप देखे दूध की, बोला यार माशाल्लाह दूध में, फौरन दूध पिया, क्या कहेंगे आप? क्योंकि अनहोनी चीज, आप ये हमेशा याद रखें। आप पैकिंग गाड़ी ली है, मर्सिडीज है आपकी, BMW बाहर खड़ी अभी ली है, ठीक है ना, आपको पूरे कॉन्फिडेंस है कि मैं जाऊंगा इसको चलाऊंगा। एक गया वहां हमारे साथी गाड़ी खराबी चलते चलते भी आज तक निकली नहीं गैराज से, वजह क्या है? मैं तो बड़ा तैयार होकर जा रहा हूँ, कई दफा हुआ अब जाकर गाड़ी बैठे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई है, ये क्या हुआ? स्टार्ट थी क्यों? कि हमारी तबाकत और है, अल्लाह के सिस्टम हो रहे हैं। तो जब भी कोई हमें यकीन भी होगा ये काम होगा, इसमें आपको मुझे यकीन है मैं जाऊंगा गाड़ी स्टार्ट करूंगा हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी मैं क्या कहूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा करम तेरा ही था, वरना तो ये चलने वाली नहीं थी, शुक्र है मैंने बोला तुमने इस गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन हम भूल जाए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि चीजें अब हमने तो देखें, एक चीज है ये तसव्वुफ, यही है तसव्वुफ, यही है कि दुनिया से तवज्जा हटा के अपने मौला के साथ तवज्जा लगा, दुनिया में भी रहे और तवज्जा किधर चले जाए। हम इसका मतलब ये समझते हैं कि दुनिया छोड़ दो बस, फिर मैं कहता हूँ मौला के साथ तवज्जा, अपनी तवज्जा ध्यान अल्लाह के साथ लगा लो। ये कैसे हो सकता है हम दुकान छोड़ दें, अपने काम छोड़ दें, अपना छोड़ दें, हर वो कैसे अल्लाह के साथ ध्यान लगेगा? ये अल्लाह का ध्यान नहीं, इतना काम भी हम नहीं कर सकते, एक मोहसन का, मोहसिन आजम का इतना भी शुक्र अदा नहीं कर सकते कि हम हर चीज उसकी तरफ लेके जाए। सोचिए हमसे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह का मुकाम नहीं है। आप जाके सोए, सोने के बाद बहती नींद की नहीं, उठ गए सुबह, ये अल्हम्दुलिल्लाह का मुकाम नहीं है। फर्ज हो जाता, कान बंद हो जाते, नजर ना आता, लेकिन यकीन अपने भी किया हुआ है, हम अपने आप को खुद समझते हैं उस मौला की, उसकी तरफ जाए हर चीज। जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो यकीनन हमारे उस वक्त दिल में यही सब चीजें थी कि मेरा कोई कमाल नहीं, कमाल तेरा है मेरे रब कि तूने मुझे उठा दिया। जॉब पे जा रहे, मुझे पता है यही मेरी कुर्सी है, जाके बैठूंगा जनाब मैं यहीं हूँ, मेरे सब यहीं काम करूंगा, लेकिन जैसे कुर्सी बैठे आप कहें बिल्कुल यकीन हो कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र आज भी मुझे जॉब मिल गया। हो सकता है मेरा बॉस मुझे कहीं ऐसी जगह फेंक देता कि जो मुझे नापसंद था और ना गवार था, मैं वहां जाकर काम करता तो कितना बुरा होता, लेकिन शुक्र आज अल्लाह ने मुझे फिर यहां बिठा दिया। सही बात है, करते हैं हम लोग ये सीधे बताएं, कभी किया ही सोचा हमने नहीं सोचा ना, इसी का नाम सूफीज़्म, ये तो तसव्वुफ है। और तसव्वुफ क्या है? मिला अपने रब से बंदा, नहीं मिला अल्लाह वाले मिला देते ही नहीं मिला देते, ये हमें काम कर लें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से मिल जाते हैं इंसान। ये क्या इलाज हो रहा है कौलून, ये तो एक अच्छी चीज नजर आ गई। अब ये है कि कोई खूबसूरत चीज नजर आती है, हमें माहौल नजर आता है, उसका क्या है, उसमें दिल में राहत पहुंचती है, उससे एक फरहत पहुंचती है, मुकाम आता है। नहीं आता, आप किसी खूबसूरत चीज को देखते हैं या कोई ऐसी चीज आपको है जो एकदम अट्रैक्ट करती है आपके दिल पर, राहत सी महसूस करते हैं, एक बेहतरीन रंग देख लेते हैं, या बाहर निकलते हैं जैसे पता नहीं यार क्या मौसम, बाहर निकलते हैं एकदम सूरज निकला है, बारिश रुकी हुई, हवा नहीं है, दिल पे लगा आपकी नहीं लगा, ठंड पहुंची है दिल में, हालांकि है कितनी छुट्टी भी। तो अब हमें किस तरफ जाना है, इस राहत में भी, इस खुशी में भी, यानी आप किसी के इंतजार में किसी को देखना चाहते हैं या पता नहीं मिलेगा, अचानक आपको सामने आ गया, राहत हुई दिल में आपकी, नहीं खुशी हुई है ना, या कोई आदमी बहुत ही आपको महबूब है उसको आपने देख लिया, खुशी हुई या नहीं है? उस वक्त क्या कहें, हमने तो अलग तक पलटना है। सुभान अल्लाह, सुभान क्या क्या खासियत है, एक हसीन चीज है क्या, फिर भी ये जो तू मुझे सब कुछ दिखा रहा है हुस्न में, तुम्हें सुभान तेरी तरफ ही जाएगा, ये सब कुछ तेरी हुस्न से है वरना कुछ भी ना होता, ये राहत जो तूने मेरे दिल में डाली है तेरे ही कर्म से। मुझे आज भी याद आता है कि जब भी मैं अपने हजरत नवरम को सामने जाता था, आपके चेहरे वाले को देखते सबसे पहले कहता सुभान अल्लाह, कहते अल्लाह तू मुझे अपने वली का चेहरा दिखा रहा है, अपने दोस्त का चेहरा दिखा रहा है, और अल्लाह के छलके नजर आ रही इसमें, दिल में राहत आती थी, पहले सबसे मैं ये कहता था सुभान अल्लाह, और मैं महसूस करता था कि इस कलमात के साथ जैसे अल्लाह ने चुन लिए और मेरी रूहानी तरक्की महसूस करता था। कभी किया आपने, कोई अच्छा आदमी नजर आ जाए, कुछ आ जाए, हैं डफ के डफ कैसी कायनात बिखरी हुई है अल्लाह तक पहुंचाने के लिए, किस तरह चीजें बिखरी हुई हैं कि हम अल्लाह तक पहुंच जाए, रुजू हो जाए, हम ये समझते थे बस। अब एक ये भी एक आपने बहुत मुकैद कर दिया ना इस तसव्वुफ को, तो बस ये हजरत साहब ने जो तस्वीर दी है, 100 तस्वीर 15 तस्वीर के बाहर निकलो चलो बाकी सब फ्री, ये क्या बात, वो तस्वीर दे के आपको ये बताया जा रहा है कि अपने दिल को इतना पक्का करो कि हर वक्त रुजू अल्लाह की तरफ हो। हम इन कलमात को भूल ही गए, हर चीज के साथ कलमात चलते हैं सुभान अल्लाह। आप कहें किसी की देखा आपने, बहुत आपकी बेटे ने गाड़ी ले ली, या आपके बेटे ने, या आपके चाचा ने, या अपने मामले को बेहतरीन मकान बना लिया, आपने खुद को मकान बना लिया, आप उस मकान को देखने गए, आपने देखा बड़ा खुश, और देख के आप उस मकान को देखा है या किसी चीज को देखा है, दुकान को देखा है, किसी गाड़ी देखा है, उसको क्या बोलेंगे आप? माशाल्लाह। क्या हुआ उससे? कितना बड़ा कलमा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला कहेगा मैंने तुझे हसद से बरी कर दिया। ये वो मुकाम होता है जिसमें इंसान बड़े बड़े हसद में गिर जाते हैं। किसी के मुकाम को देख के ना गिर जाता है आदमी, रूहानी मुकाम को देख के आदमी जलस जाता है, जलस होता है नहीं। तो जब किसी के मुकाम को बढ़ता देखे, किसी के मकान को बढ़ता देखे, किसी के दौलत को बढ़ता देखे, किसी के अंदर बढ़ोतरी देखे आदमी, तो उस जलस को खत्म करने के लिए दिल के साथ आवाज क्या निकले? माशाल्लाह। तो उसमें क्या होगा? खुद अपना इलाज भी हो रहा है और दूसरी क्या है, उस आदमी का भी इलाज हो रहा है जिसका आप मकान, जिसने आपको दावत दी कि आए, वो तो बेचारा दावत दे रहा है, आए जी देखें आप मेरा मकान देखें, मेरा बड़ा अच्छा मकान लिया, आज आपको उस चाय पे जा रहे हैं, वो वहां जाके बेहोश हो जाते, देख के दिल्ली से बेहोश हो जाते, बड़बड़ी हुए लोग उनको वहीं कशा जाते हो, दुकान ले लिया, कैसे ले लिया इसने, उसको वहीं कशा, क्या इसने गाड़ी कैसे, वो बेचारा उसको पता नहीं एक नीयत से कर रहा है, अभी शो मार, शो मारने के लिए ना बुलाए, मतलब ऐसे दोस्तों को दिखाने के लिए बुलाते हैं ना आदमी, तो उसने आप क्या जाके देखा, मेरे दोस्त ने बुलाया, बाप ने, चाची ने बुलाया, माशाल्लाह। तो ये क्या हो रहा है? कौन सदीदा, ये किस चीज का इलाज हो रहा है? आपकी जबान के इलाज हो रहा है। इन कलमात से जो असर पहुंचेगा आपके वजूद के अंदर, आपकी जबान को जो इलाज होना शुरू हो जाएगी, सारी बीमारियों को अल्लाह दूर करना शुरू हो जाएगी, हर चीज जबान जो है, हमारा वजूद जो है वो अल्लाह की तरफ पलट रहा है माशाल्लाह। क्यों? ये सारा कुछ जो है कमाल तो अल्लाह का, जिसने तुझे ये चीज दे दी, तेरा कोई कमाल नहीं इसमें, अल्लाह ने तुझे मेहरबानी कर दी, इसने तुम्हें हलाल माल से सब कुछ कमाया कि आपको किसी ने हदिया दे दिया, लेना देना तो होता ही नहीं होता, मैं आपको दे दूंगा आप मुझे दे देना, हदिया दे दिया किसी ने, आपके पास हदिया आ गया, आप क्या कहते हैं? किसी ने आम भेजे, आम खा के पी के मुंह पे हाथ मार के बैठ गए, या बड़े खट्टे थे सही आम बेचता यार क्या किया, बचा उस बेचारे, किसी ने आपको कोई चीज दे दी उसमें डिफेक्ट नहीं कर दिया, ये तो ऐसा था ऐसा था, मजा नहीं है, सुभान अल्लाह। जिसने आपको हदिया दिया है, हदिया दिया है, उस वक्त क्या है कि हदिया वो तो दे रहा है, लेकिन हमें किस तरफ रुजू करना है? अपने रब की तरफ। कहते इस हदिये के जो दिल में डाला है मेरे मौला ने, इसके दिल में डाला है और इससे अल्लाह पाक ने इसको इस्तेमाल किया है मुझ तक पहुंचाने के लिए, मेरी जरूरत खत्म करने के लिए। तो अल्लाह किसका ख्याल कर रहा है? मेरा ख्याल कर रहा है, इसे मेरे पास आ रहा है, आपका ख्याल कर रहा है, शुक्रिया तो अल्लाह का है ना सारा, लेकिन जिस आदमी ने दिया है तो हक उसको भी जाना है ना, फिर क्या कलमा कहना पड़ता है? बार कर रहा सब, इतना प्यारा कलमा है ना, और दुआ है। मुझे बताएं, एक हदी आपको कोई चीज देता है और आपने जबान से कह दी बारकल्ला, और किसी की जबान इतनी पाक हो कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर ले, एक हदिया 5 पाउंड का, 10 पाउंड का या 100 पाउंड का भी हो, उसके जगह उसको बरकतें मिल जाएंगे अल्लाह की, उसके हर चीज में बरकत आ जाएगी, उसने कहते हैं बारकल्ला, कहते मैंने कबूल किया, उस घर में तो बरकतें आ जाएंगी उस चीज की। हदिया देना कितना काम आया मुझे बताए, लेने वाले काम बना, उसने अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह ताला वो पलटा अल्लाह की तरफ, उसने अपनी जबान का इलाज कर लिया, और जिसने दिया उसका कमाल हो गया कि उसने उसके दिल में आया, चला उसने दिया, आपको लाके दिया, बड़ी बात है, पैसे खर्च किए, मोहब्बत का इजहार किया आपने, तो आपने हक दिया उसको, क्या कहा? बारकल्लाह। और अल्लाह ने सुन ली दुआ, अल्लाह के यहाँ कौन सी कमी, उसने आप दुआ सुन ली, जैसे दुआ सुनी और बरकत की दुआ, उसके घर में बरकत, जिंदगी में बरकत, माल में बरकत, बरकतें शुरू हो गई उसके अंदर। ये क्या इलाज है? कलमात याद हो रहे हैं? क्या बताते हैं? भूल गए? बिस्मिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सुबहानअल्लाह, ये चला ना, फिर माशाअल्लाह, ये चला, बरकअल्लाह। अब तो नहीं बोलेंगे, बोल, कल से प्रैक्टिस करनी है हमने इस चीज पर, क्योंकि हमने अपने दिमाग को हर वक्त अल्लाह के साथ रखना है। जब ये हर वक्त ये फेल हमारे साथ होंगे तो आप तो अल्लाह के बंदे हैं, फिर जिक्र हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको पक्का हम तस्वीर से करते हैं, जो हम कहते हैं शेख ने तस्वीर दी अल्लाह अल्लाह की, सुबह शाम इतनी तस्वीर करें, इस रुजू को सारा पक्का करते हैं उसके साथ। बस यही नहीं, बस हो गया जिक्र तो खत्म, नहीं नहीं, अल्लाह कहता है हर वक्त तुमने जिक्र करना है मेरा, तो हर वक्त का जिक्र ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जिक्र का मतलब क्या है? जिक्र का मतलब तवज्जो इल्लाह, जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं हमारी तवज्जो किधर होती है? अल्लाह की तरफ जाने की कोशिश करते हैं ना, अल्लाह की तरफ हमारी तवज्जो आ जाए, तो ये घंटों के लिए अल्लाह हमारा, ये क्या बात है? हमारा तो ताल्लुक अल्लाह से समझेगा, एक सांस भी हमारा सनम के लगता तो जानो, और हर सांस के अंदर हमारे अल्लाह ताला ने, हर सांस में अल्लाह ताला ने नेमत रखी है, चीजें रखी हैं, और साथ का कलम ही अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहते। बारकल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी चीजें आ गई ना आपका जिंदगी है, दिन है, ऐसे हो जाते कि चीज नागवार हो जाती है इंसान की, नागवार कुछ जैसे खुशी हुई थी हमें, सुभान अल्लाह हमने कहा, दिल में खुशी हुई, बाद वैसी बात हो जाती कि दिल में रंज हो जाता है, उसकी तकलीफ हो जाती है, तकलीफ भी तो हो जाती है, नहीं छोटी या बड़ी कोई भी तकलीफ हो तो उस वक्त भी कहाँ जाना चाहिए हमें, बजाय गाली निकालने के, उल्टी सीधे लफ्ज़ करने का, उल्टी बकवास करने के, उस वक्त हम क्या करें, तकलीफ हो जाए इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि, बस कोई बात नहीं, तकलीफ क्या बात है, ये मेरा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं मौला, तेरा था तूने ले लिया, क्या फर्क पड़ता है इस चीज़ से, इतना कमाल हो जाएगा इसकी बात में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुभाना तआला नमाज थी उसी चीज से बेहतर चीज अता फरमा देते हैं, तो नुकसान, वो नुकसान भी फायदेमंद चीज हो गया, आप बीमार हो गए, बुखार हो गया, सर में दर्द हो गया, ये नागवार चीज है ना, कोई ऐसी बात सुन, किसी ने बुरा कह दिया, किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, या जो चीज आपको दिल को तकलीफ दे, दिल पे उसका असर हो, कौन बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये सारी कलमात अल्लाह पाक ने हमें दी है, अल्लाह सुभान अल्लाह, एक एक सखीरा, ये सब हम अल्लाह की तरफ लेके चलते हैं, सारे मामलात अल्लाह की तरफ लेके चलते हैं, सारे कलमात, तो ये क्या है, हज़रत ने कि भाई जबान का कोलन सजदा करना चाहते हो तो क्या करो, अल्लाह का जिक्र करो, तन्हाई में वैसे जिक्र जैसे बताया गया है, हर वक्त चलते फिरते कोई काम भी हो कर अल्लाह की तरफ जाओ, खुशी हो अल्लाह की तरफ, गम हो अल्लाह की तरफ, खाना अल्लाह की तरफ, आप हदिया अल्लाह की तरफ, जो कुछ भी अल्लाह की तरफ, ये कल ये लफ्ज हमें बताएंगे कि सारा कमाल अल्लाह का है, हमारा कुछ भी नहीं, इसका नाम तो सब जो इसमें पक्का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो जाकिर शाकिर कहलाते हैं, उसको शुक्र करने वाला है, अल्लाह का जिक्र करने वाला है, हर चीज में बरकत होगी, फल अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुमने अपनी जबान को सही कर लिया, ठीक है ना, ये हमारा जब तक हम अपनी जबान को सही करेंगे ना, हमारी परहेजगारी आएगी ना, कोई तसव्वुफ आएगा ना, कोई जन्नत की गारंटी है ना कुछ, एक तो ये हो गया इलाज इसका, और दूसरा इलाज क्या है ना, उसको सही करने का, खामोश, कोई बात बोलनी तो बोलो, वहां कोई जरूरत नहीं, चुप क्या जरूरत है, हमारा क्या काम है, दो आदमी बात भी करें उसने जरूर टांग लानी बीच में, नजी नहीं ये आप क्या बात करें, ऐसे तुझसे पूछता आदमी बात, उसने जरूर बात कर देनी, किसी की बात हो रही है आपने बीच में बात कर, सियासत की बात चल रही है कुछ पता है क्या जी कौन आप, पहले ऐसे पूछ क्या क्या कह रहे हैं जी आप, कि तुम्हें क्या तुम तो जाओ अपने काम से, दो आदमी बात कर रहे, ये फजूल बातें आदतें हमें छोड़ देनी चाहिए, छोड़ अल्लाह नबी इरशाद फरमाते हैं इस इलाज में, एक साहबी से फरमाया कि तू निजात चाहता है, कितनी बड़ी बात है, तू निजात चाहता है, कहते या रसूलल्लाह, कहते खामोशी अख्तियार कर, या बोलेंगे उस वक्त बोलेंगे जब ये सब मैं चीजें आपको बातें बताई हैं, और जब इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर हमने क्या करना है, चुप, फिर जरूरत ही नहीं हमें बिल्कुल करने, अल्लाह के नबी सुनाता हूँ हदीस से, खामोशी, खामोशी को ऐसी चीज ना समझें आप, खामोशी क्या चीज समझे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, एक साहबी से कहते हैं कि मैं तुझे सबसे आसान सबसे बेहतरीन इबादत बताऊं, इबादत क्या सुन बताइए, बहुत आसान है, बहुत जबरदस्त इबादत है, बताएंगे खामोश, इबादत है मालूम है, तुम्हें इस इबादत का आखिर में क्या क्या हिसाब है, क्या सलाह मिलेगा इसका, क्या सलाह है इसका, इरशाद फरमाया इसका सलाह यह है कि ये तेरे अमाल में खामोशी तोड़ी जाएगी, हाल में कुछ नहीं कर रहे हम उस वक्त इबादत नहीं कहते, ये इबादत तोड़ी जाएगी खामोशी, और हमें जब तोला जाएगा तो वजन दरकार होगा, फरमाया ये खामोशी सबसे बड़ा वजन देगी, سیاست ڈال لیا نقش بندی کو تو ہونا چاہیے. نہیں بابا ماں کہنا ہے گرمی خاموشی ہے, حتیٰ کہ لوگ کہیں یار آپ بولتے ہی نہیں, وہ ہنس پڑے لوگ آپ سے کہیں بھی آپ تو کچھ بات کریں, بیوی آپ کہے کہ بھی کیا ہوگا آپ بات ہی نہیں کریں, ناراض ہیں آپ ہنس پڑے, ان کو بات کرنے کی ہے ہی نہیں, کیا بات کریں. لیکن کیا ہم خام خواہ بولتے ہیں, اسی بولنے سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں, پھر غیبت شروع ہوتی ہے, پھر فراز شروع ہوتے ہیں, اور پھر کہیں سے کہیں بات چلی جاتی. بس خاموش, کتنی بڑی بات ہے, اتنی دیکھیں آتی نجات بھی ملتی ہے, عبادت بنتی ہے خاموشی, اور کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ عمل عمل میں وزن اس کا ہوتا ہے خاموشی. سبحان اللہ. تو یہ چند چیزیں انسان کرے, لاکھ سمجھ جیسے ارشاد فرمایا خاموشی کی عادت ڈالے, اور ان کلمات کو جو ہمیں اپنی زندگی میں پریکٹس کریں, ہر بات میں سامنے لائیں اس چیزوں کو, تو کیا ہوگا ہمارا قولن سدیدہ, اس علاج ہو رہا ہوگا ہمارے زبان. اور زبان اگر صحیح ہو گئی, او اگر زبان صحیح ہو گئی پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی آیت میں یسلی لو یسلکم اعمالکم. پہلی چیز کیا ہوگی, زبان صحیح ہوگی کیا ہوگا, اللہ کہتا ہے کہ میں تیرے اعمالوں کو قبول کر لوں گا. یسلی لکم اعمال, کیا مطلب اس کا, تیرے اعمالوں کو, یہاں بڑی زبردست بات آپ سن نقطے کی بات کرتا ہوں, اعمال جو ہم کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ جو تم نے نماز پڑھی ہے, جو تم نے ابھی عبادت کی ہے, جو کچھ بھی تم نے کی ہے وہ ایک عمل کی ہے, لیکن تیرے پاس کوئی گارنٹی نہیں تو اس کو قبول کرے, نہیں نا گارنٹی, لیکن جس وقت تیری زبان سچ ہوگی ٹھیک سدھری ہوگی تو میں گارنٹی دیتا ہوں, اللہ کہتا ہے کہ ہر عمل کو میں تیرے قبول کر لوں گا. تو سارے مرہون منت جو ہیں ہمارے اعمال, مرہون منت سمجھتے ہیں سارے اعمال جو ہمارے ڈپینڈ کرتے ہیں, ڈپینڈ تو سن منسر کرتے ہیں, جس پہ جا کے لائن لگتی ہے کہ اس سے اللہ قبول کرے گا, وہ کیا چیز ہے, یصلح لکم اعمالکم. چن لے گا اللہ تعالیٰ اعمالوں کو, چن لے گا, پسند کر لے گا تیرے اعمالوں کو, پسند کر لے گا. کیوں کہ تیری زبان اچھی ہے, زبان تیری بہت اچھی ہے, تو ہر کام میں وہی کرتا ہے جو میں نے جس طرح کہا ہے, زبان تو خاموش رہتا ہے یا اس کو بالکل ایسے ہلاتا ہے کہ تو میری طرف لے کے چلتا ہے, ہر چیز کو میری طرف پلٹتا ہے, میری طرف تیرا رجوع ہوتا ہے, تو اب جو جاؤ بھی تو عمل کرے گا, کچا پکا چھوٹا بڑا سب میری بارگاہ میں مقبول ہو قبول ہو چکے ہیں, یہ سنے لگا. اور دوسرا نام کیا ہوتا ہے, وَيَخُلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تو تم سنو کہ میں تیرے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں. انسان تو خطرہ ہے نا, تیری زبان سے یہ ہوگی تو باقی زبان تو تیرے گناہ جو ہے ساتھ کے ساتھ لپیٹتا رہوں, کیونکہ جنت کی بشار جو ماتو جیسے چکھو لو تم سنو تیری گناہ. آپ مجھے بتائیں باقی رہ کے آ گیا, باقی تو یہ رہ گیا کہ سرکار خود فرما دیں کچھ چیز تو پھر بات بن جائے. اس پر سن رہے تھے ترمذی کی حدیث سنا رہے تھے آپ سے زبان میں کیا کہا, فرمایا جس شخص نے اپنی زبان کو صحیح کر لیا, محفوظ لفظ حدیث کی, اپنے زبان کو اور شرمگاہ کو محفوظ کر لیا, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, جنت میں پہنچ گئی. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو میرے بھائی جنت تو بہت آسان ہے حقیقت, ہم تو کسی طرح سے ہلتے ہی نہیں ہیں, سمجھتے بھی نہیں ہیں, کوشش بھی نہیں کرتے, تو یہ تو بہت آسان کوشش ہیں جس میں دنیا بھی آ رہی ہے اور آخرت بھی آ رہی ہے ہمارے, الحمدللہ. زبان کو کنٹرول کرنا ہے, بس فضول بات نہیں کرنی ہے, اور جب بولنا ہے تو بس اس طرح بولنا ہے جیسے میں نے بتایا آپ, یہ اسی کا نام تصوف ہے, یہی صوفی ہے. باقی ڈانس کرنے جو کرتے ہیں لوگ, باقی دھمڑے ڈالنے صوفی ہیں, یہ صوفی ہیں وہ صوفی ہیں, دیکھتے ہوئے تماشے, یہ ڈانس کر رہا ہے, وہ ڈبڈ بنا رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, جتنے ڈرامے ہو رہے ہیں یہ سب ڈرامے ہیں. اصل صوفی سمجھ یہی ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف بندہ چلا جائے, دکان پہ جا رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, ٹیکسی چلا رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, کسی کی وہ صوفی ہے, کیونکہ وہ اپنے ساتھ نہیں ہے, گاہک آیا اس نے کیا کہا, الحمدللہ رزق آ رہا ہے نا, بہترین اللہ کا رزق آ گیا, हालांकि वहां तो समझ गया मैंने भेजा, मैं तो समझता तू अपने ही समझ जाएगा मैं चला रहा हूँ टैक्सी, मेरे गाहक आ रहे हैं और तूने तो मेरी तरफ कर दिया, ले फिर गाहक ही गाहक आते रहेंगे। तो बंदा क्या कहता है, और तू गाहक बेचता है मैं भी अलहमदुल्ला ही कहता रहूँ। ये नहीं सुबह एक गाहक आया तो उस वक्त आपने अलहमदुल्ला, बाकी चुप हो गए। हम लहा अल्लाह की तरफ होनी चाहिए इन 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 तरीकों के साथ। अल्लाह ताला कहता है इंसान सही कर लेता है क्या हो जाता है, मुत्तकी हो जाता है, उसके अमालों को कबूल कर लेता हूँ, उसको जन्नत की खुशखबरी दे देता हूँ। अल्लाह के नबी ने हमें बता दिया कि भाई मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ, जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो आज से इसकी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। एक तो इनाम है जो हम कर रहे हैं, असल चीज़ तो यही है, कोई मुश्किल काम नहीं। बस आज से सोच लें कि ये जो हमने कल में जहन में बिठा लिए हैं इंशाल्लाह, इसके लिए ये नहीं कि मैं गंदा आदमी हूँ, मैं तो बुरे काम करता हूँ, ये मैं ये कभी ना सोचना ना, ना। ऐसे कभी नहीं सोचते, जब बुरे काम करें तो फिर इनल्ला पढ़ लिया करें, क्योंकि दिन में तकलीफ पूछते हैं इन लिल्ला वनराज कर दिया करें, इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। वो भी एक पोजिशन है ना ऐसी कि इंसान गलत काम करता है तो उस पर ये पढ़े। अल्लाह ताला वाकई अलती हुई है, बहुत बड़ा तकलीफ हो रही है मुझे, करता रहा हूँ आदत पड़ी गई क्या करूँ, लेकिन साथ में इन अल्लाह पढ़ता रहे, अल्लाह फजल इंशाल्लाह निकाल के जन्म रुजू तो कर रहे हैं ना अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला माफ़ी मांगूंगा। तो ये शुरू कर देना चाहिए आज से इंशाल्लाह, और हर आदमी जो है इस पर अमल करे, मैं भी अमल करूँगा इंशाल्लाह, ताकि हमारी जबान और सदीदा जबान सही हो जाए, और ये सही होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह काम बन जाएगा, अल्लाह ताला फजल फरमा देंगे। और यही मेहनत है हमारी, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, इसलिए हम जिक्र करते हैं, इसलिए हम अपने आप कहते हैं सूफी हैं, तो बाकी और कुछ सूफी और कुछ नहीं होता, किसी चीज़ का नाम नहीं। बस इस पे हम प्रैक्टिस करते रहें, फिर अल्लाह ताला मुकामात खुद ही देते रहते हैं, मुकामात भरते रहते हैं आदमी, और मुकामात में अल्लाह ताला तो खालिक मलिक कादिर जो जिस तरह आपको ले जाए कहाँ कुछ दिखा दे, वो तो उसके ताकत तो उसका फजल है, उसका कारण है, किस तरह उठाता जाए। बेसिक यही चीज़ है सारी मेहनत करने, बेसिक चीज़ें। दुआ करें अल्लाह पाक में तौफीक अता फरमाए।